पृष्ठ संख्या 79। सप्रु जयकर राजगोपालाचारी राजेंद्र प्रसाद एमसी राजा डॉक्टर अंबेडकर चिमन लाल सितलवाड़ एमएस अड़े डॉक्टर मुंजे पी बालू कुंजरू ठक्कर आदि गांधी की जिंदगी बचाने तथा शीघ्रातिशीघ्र छुआछूत मिटाने पर सम्मेलन में पूर्ण एकता थी। 20 सितंबर को गांधी ने पत्रकारों से कहा, मैं जन्म से सवर्ण हूँ लेकिन स्वेच्छा से अछूत हूँ। मैं अछूतों में अगली 10 की पंक्ति होती है उसमें से भी नहीं हूँ। उनमें भी जातियाँ व वर्ग हैं। मेरी तीव्र इच्छा अपने को अछूतों की भी जो सबसे नीचे की पंक्ति है उस पंक्ति का हो जाऊं। मेरी आँख और दिमाग के सामने वे हैं जिन्होंने गहरे प्याले में जहर पी रखा है। मैं तो मलाकर और उड़ीसा के कुछ भागों में उनसे मिल चुका हूँ। मेरा पूरा निष्कर्ष है कि उनकी तरक्की आरक्षण के सिद्धांत से नहीं होगी। उनकी तरक्की के लिए तो उनके बीच में रहकर हिंदू समाज सुधारकों को लगातार अपने सम्यक प्रयास से उन्हें आगे करना होगा। बंटवारे की प्रवृत्ति ने सुधार के सारे कार्यक्रमों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ऐसी खराब हालत के लिए मेरा मन सदैव विद्रोह करता रहता है। पृथक मताधिकार की बात वापस लेने से मेरे शब्द तो वापस हो जाएंगे लेकिन आत्मा वापस नहीं होगी। मेरी स्वतः आरोपित अछूत की भावना छूत अछूत के तात्कालिक पेबंद लगाए काम से संतुष्ट नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ कि जिस बात के लिए जी रहा हूँ और जिस बात के लिए मरने में भी सुख की अनुभूति करूँगा वह है छुआछूत का जड़ मूल से विनाश। इसीलिए छूत अछूत की एकता का प्रदर्शन शब्दों से नहीं व्यवहार में पूरे देश में दिखाई पड़े। वे दोनों अपने को शब्दों से नहीं वास्तव में भाई माने। इसी स्वप्न को पूरा करने का अवसर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा ने दे दिया है। यह तो अंत की शुरुआत है। हिंदुओं ने पीढ़ियों से अपने भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसकी भरपाई सैकड़ों जान देकर भी नहीं हो सकती। उन्हें न्याय के पथ पर आना होगा। यदि मेरे अनशन से सवर्ण हिंदुओं में न्याय की भावना जगे, यदि वे अपने उद्देश्य की पवित्रता और कर्तव्य को समझ सके तो मेरे अनशन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यदि सवर्ण हिंदू मेरे जीवन के लोभ में जल्दबाजी में किसी फैसले को स्वीकार कर घरों में बैठ जाते हैं और अछूतों के उद्धार के काम को नहीं शुरू करते तो मेरी जिंदगी कष्टपूर्ण हो जाएगी। ऐसा करके वे फिर गंभीर अपकृत्य करेंगे। यदि केवल पृथक निर्वाचन का अधिकार वापस हो जाए और वास्तविक काम छूट जाए तो मेरा अनशन तो खत्म हो जाएगा लेकिन यह मेरी मौत से भी बढ़कर होगा। फिर मुझे अनशन समाप्त करने के साथ ही दूसरे अनशन की नोटिस देनी होगी। दूसरे के लिए यह बचकाना काम लगेगा लेकिन एक बड़े काम के लिए मेरे पास जीवन देने के अलावा क्या है? यदि छुआछूत खत्म हो जाए तो यह केवल हिंदुत्व की सफाई के लिए जरूरी नहीं है अपितु इसका प्रभाव विश्वव्यापी होगा और मेरा संघर्ष तो छुआछूत के खिलाफ ही नहीं अपितु मानवता की अशुद्धता के खिलाफ है। उनके अनशन से पूरे देश में विक्षुब्ध वातावरण था। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती में कहा कि भारत के भविष्य पर अंधेरा छा रहा है जैसे आकाश में डूबते हुए सूर्य की छाया से अंधकार आने लगता है। देश के हर कोने में गांधी जी का जीवन बचाने के लिए प्रार्थना सभाएं होने लगीं। गांधी जी ने अपने विदेशी शुभ चिंतकों को संदेश में कहा, कैबिनेट का निर्णय मेरे लिए ईश्वर की ओर से समय से दी हुई चेतावनी जैसा है। जब वह मेरे दरवाजे खड़ा होकर मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, तो मैं सो रहा था। पृष्ठ संख्या 80। जब तक छुआछूत का एक-एक कण समाप्त नहीं हो जाता, मेरी आत्मा को चैन नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद है कि इस महासंग्राम में अब अकेला आदमी नहीं हूँ, अपितु देश के करोड़ों लाखों लोग इस महारोग को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। हिंदू नेताओं का 20 सितंबर का सम्मेलन स्थगित होकर अनौपचारिक बातों में बदल गया था। डॉक्टर अंबेडकर किसी कीमत पर पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। सर तेज बहादुर सप्रू ने एक सुझाव दिया, सीमित क्षेत्रों के लिए प्रथम और द्वितीय चक्र के मतदान में संयुक्त मतदान के अधिकार को रखते हुए दलितों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। डॉक्टर अंबेडकर व उनके साथ डॉक्टर सोलंकी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सीटों से अधिक सीटें हमें दी जाएं। सप्रू जयकर, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद देवदास, जीडी बिड़ला सभी अंबेडकर के साथ गांधी जी से पूना में मिले, अपनी स्कीम से उन्हें अवगत कराया। गांधी ने सुझाव को लिखित मांगा और विचार करने को कहा। 22 सितंबर को गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी को फोन पर इस स्कीम के बारे में बताया। इस सुझाव में गंभीर विसंगतियां हैं, मुझे यह पसंद नहीं है। यह पुनः दलितों को दो हिस्से में बांट देगा। विधायिका में एक पैनल ग्रुप होगा और एक सीधे चुनकर आने वालों का। फिर हमेशा पैनल सीट के लिए मारामारी होगी, जिससे अछूतों में ही हीनता और उच्चता की भावना पैदा होगी। मैं इसमें पक्ष नहीं बन सकता, मुझे दूसरा मुद्दा भी स्वीकार्य नहीं। इसके अनुसार अछूतों को स्थानीय नगर पालिकाओं, स्वायत्त संस्थाओं, जिला तालुका, गांव में भी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व हो तथा केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में भी उनकी आबादी के अनुसार कम से कम आरक्षण मिले। गांधी जी से डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सोलंकी पूना जेल में मिले। अंबेडकर ने कहा, महात्मा जी, आप हम लोगों के प्रति अनुचित कर रहे हैं। गांधी ने कहा, मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मैं लोगों को अनफेयर लगता हूँ। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? गांधी जी अनशन से कमजोर हो गए थे। उनसे अंबेडकर ने कहा, हमें पुनर्वास चाहिए, हम आपके साथ हैं, जो भी बात आप कहते हैं। गांधी ने कहा, आपने अभी कहा है आप मेरे जीवन की रक्षा चाहते हैं। अंबेडकर ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैं आपके प्राणों की रक्षा चाहता हूँ, और यदि आप दलितों के उद्धार के काम में अपने को समर्पित कर दें, तो हमारे आराध्य हो जाएंगे। गांधी जी ने कहा, क्या आप सचमुच मेरी प्राण रक्षा चाहते हैं? तब तो आप जानते होंगे कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको जो कुछ भी ब्रिटिश सरकार ने दिया है, उसे छोड़ना होगा। आप द्वारा प्रस्तावित दोहरी मतदान व्यवस्था से अन्य पक्षों को भी तरक्की का पूरा अवसर मिलेगा, और पैनल से प्राप्त सीटों से आपके लोगों का हित सुरक्षित होगा। क्यों नहीं आप इसे सभी सीटों के लिए प्रस्तावित करते? यदि पैनल व्यवस्था एक वर्ग के लिए लाभकारी है, तो यह व्यवस्था समस्त दलित वर्ग के लिए लाभकारी होगा। आप जन्म से अछूते हैं, किंतु यह स्थिति मैंने इच्छा पूर्वक स्वीकार की है। मैं अछूत स्वेच्छया हूँ और मैं मन से आपसे बढ़कर अछूत हूँ। कोई स्कीम ऐसी हो तो अछूतों के एक वर्ग अथवा दूसरे वर्ग के लिए लाभकारी न होकर अछूतों के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो। एक, महात्मा तेंदुलकर, वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 171। पृष्ठ संख्या 81। मैं इसी कसौटी पर इस योजना को कसता हूँ। आपको मेरा सुझाव है कि पैनल सिस्टम सभी अछूतों के लिए हो। मैं इस सिद्धांत को नहीं स्वीकार कर सकता जिसमें आपका समूचा वर्ग हमसे अलग खड़ा हो, चाहे व्यवहार में या सिद्धांत में। यदि आपके वर्ग में किसी तरह का विभाजन होता है, तो मैं उसके लिए भी जान की बाजी लगा सकता हूँ, जैसा कभी मैंने संपूर्ण हिंदू समाज के लिए लगाया था। तब जाकर डॉक्टर अंबेडकर के विचार में परिवर्तन आया। उन्होंने कहा, मैं संयुक्त मताधिकार को स्वीकार करता हूँ। आपका सुझाव कि सभी सीटों के लिए प्राइमरी चुनाव ही बहुत उचित है। फिर गांधी ने सुझाव दिया, जो पैनल बने वह केवल 2 का न होकर 5 का हो। 23 सितंबर शुक्रवार को 25 नेताओं की बैठक हुई। गांधी जी का सुझाव कि पैनल व्यवस्था सभी के लिए हो, सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। पैनल में 2 सदस्यों की जगह 4 का सुझाव मान्य हुआ। प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में आरक्षित 71 सीटें दी थीं। डॉक्टर अंबेडकर 197 सीटें मांग रहे थे। बातचीत में निश्चय हुआ कि हिंदुओं की आबादी में जितने प्रतिशत दलित हैं, उसी अनुपात में सीटें दी जाएं, तो 147 सीटें आरक्षित करने का सुझाव मान्य हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% ब्रिटिश जनता की सीटें आरक्षित कर दी जाएं, जिसमें दलित वर्ग के लोग जाएं। डॉक्टर अंबेडकर अपने साथियों सहित एक-एक बात के लिए लड़ते रहे। पूरी रात वार्ता चलने के बावजूद 4 बजे भोर तक अनिश्चितता का वातावरण था। डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि 10 वर्ष पूरा होने पर प्राइमरी चुनाव को स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा, किंतु और 15 वर्ष बीत जाने पर दलितों में जनमत संग्रह कराने के बाद आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कराने का विचार हो सकता है। पूरी बहस होते रात बीत गई। इतने में खबर फैली कि गांधी जी की हालत बहुत खराब हो गई है। देवदास गांधी, जो गांधी जी की बुरी स्थिति देखकर जेल से आए थे, उन्होंने अंबेडकर से व्यक्तिगत अपील की कि अब आगे केवल जनमत संग्रह की बात बढ़ाकर समझौते को न रोके। अब समय बिल्कुल नहीं है। अंबेडकर और उनके साथी मानने को तैयार नहीं थे। उल्टे उन लोगों ने आरोप किया कि यहाँ तक कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं जो उन लोगों को ऐसे प्राप्य से वंचित करना चाहते हैं जिसके लिए गांधी सहर्ष तैयार हो जाते। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 4 बजे तक समझौता हो जाना था, लेकिन 9 बजे प्रातः डॉक्टर अंबेडकर उनके पास पहुंचकर अपने रक्षा की गुहार करते हैं। यहाँ उपस्थित कुछ मित्र जनमत संग्रह का विरोध कर रहे हैं। हम लोग इस प्रावधान के पक्ष में हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक निश्चित अवधि बीतने पर आरक्षण समाप्त किए जाने के संबंध में जनमत संग्रह दलितों का कराकर इसे समाप्त करने की बात होगी, तो इससे छुआछूत मिटाने में काफी सफलता प्राप्त होगी। हम आपसे अपने दावे का समर्थन की अपील करते हैं। गांधी जी ने सवर्णों को दांव पर रखने की बात का समर्थन किया। लेकिन पूछा, डॉक्टर अंबेडकर, यह जनमत संग्रह तत्काल अथवा कुछ समय के अंतर पर ही क्यों न कराया जाए? उन्होंने सुझाव दिया कि यदि एक वर्ष की अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है, तो इसे 5 वर्ष किया जा सकता है। एक, महात्मा तेंदुलकर, वॉल्यूम 3, कॉमा, पृष्ठ संख्या 172। पृष्ठ संख्या 82। एक वर्ष या 5 वर्ष के भीतर किया हुआ जनमत संग्रह यदि आगे आरक्षण के पक्ष में है, तो इसे फिर 10 वर्षों के अंतर पर कराया जाए। यह प्रक्रिया हर 10 साल बाद जारी रहे। गांधी पूरी बात खत्म करने वाले थे कि डॉक्टरों ने आगे बातचीत करने से रोक दिया। पुनः समझौता वार्ता प्रातःकाल शुरू हुई, लेकिन जनमत संग्रह पर बात रुक जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर पुनः गांधी से मिलने दोपहर में राजगोपालाचारी और सोलंकी के साथ जेल में पहुंचे। उन्होंने गांधी जी से 10 वर्ष के अंतराल पर जनमत संग्रह की बात मान लेने का आग्रह किया। गांधी जी ने कहा, आपका तर्क काटने योग्य नहीं है, किंतु जनमत संग्रह 5 वर्ष के अंतराल पर मान लीजिए। निश्चित ही 5 वर्ष सवर्ण हिंदुओं की शुभकामना की परीक्षा नहीं करना चाहते, बल्कि अग्रिम जनमत संग्रह के नाम पर दलित वर्गों को किसी व्यर्थ के काम के लिए संगठित करने का समय चाह रहे हैं। उन्होंने परस्पर विश्वास और प्रेम का भाव पैदा करने की पुरजोर अपील की। उन्होंने इस बात को समझाया कि कैसे उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही किसी अपने साथ रहने वाले मनुष्य को अछूत कहने की भावना से विद्रोह कर दिया था, और कैसे तभी से इस बुराई के खिलाफ निरंतर संग्राम छेड़े हुए हैं। आपको पूरा अधिकार है कि 100% कानूनी सुरक्षा की मांग करें, किंतु मैं अपने इस मृत्युशैया से आपसे आग्रह करता हूं कि अपने अधिकार के लिए इतना दबाव न दीजिए। मैं आज यहाँ अपने सवर्ण भाइयों के लिए कुछ छूट देने की अपील करता हूँ। यदि आप उसे कानून बनाकर 100% अधिकार छीन लेने का प्रयास करेंगे, तो आत्मशुद्धि और स्वपरिष्कार की प्रक्रिया जो अब तेजी से चल पड़ी है, वह रुक जाएगी। कोई अछूतों के साथ होने वाला अन्याय थोड़े समय के लिए रुक जाएगा, लेकिन हिंदुत्व का काला धब्बा बना रहेगा। आखिरकार छुआछूत तो अंतस्तल में छिपे उसी बुराई का नाम है। यदि हिंदुत्व की इस बुराई से पूरी तरह सफाई नहीं होती, तो यह बुराई किसी न किसी रूप में कई तरफ से प्रवेश करेगी और हमारे सामाजिक राजनैतिक ढांचे को जहरीला बनाएगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हिंदुओं को एक अवसर दीजिए कि वे अपने इस पापपूर्ण बुराई से मुक्ति का प्रयास करें। मुझे भी सवर्णों में काम का एक अवसर दीजिए। यह उचित ही है, परंतु यदि आप 10 या 15 वर्ष की बात करेंगे, तो फिर कोई संभावना नहीं है। हिंदू 5 वर्ष में भी अच्छे काम का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा वे कभी नहीं करेंगे। मेरे लिए 5 वर्ष का समय अंतराल का आदेश है। जनमत संग्रह होना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष के बाद का कोई समय उचित नहीं है। आप अपने मित्रों से कहिए कि मैं इस विषय पर दृढ़ हूँ। मुझे जब सत्य का एहसास होता है, तो मैं आस्थावान व्यक्ति होते हुए भी कमजोर हो जाता हूँ। इसीलिए 5 वर्ष या मेरा जीवन। डॉक्टर अंबेडकर 10 वर्ष के लिए ही जोर देते रहे। उन्होंने अपने मित्रों की बैठक बुलाई और घोषणा कर दी कि 10 वर्ष से कम की कोई बात वे मानने को तैयार नहीं हैं। किंतु अंत में नेताओं ने एक रास्ता निकाला। 3 बजे राजगोपालाचारी ने गांधी जी से कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पर एक बात कह दी है, इस विश्वास के साथ कि आप उसे मान लेंगे। हम इसे भविष्य के लिए आपसी सहमति के आधार पर छोड़ देने का निश्चय करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी इस समाधान को मान लिए। यह भविष्य पर निर्भर है कि ऐसा बिना जनमत संग्रह के भी हो सकता है। गांधी जी सावधानी पूर्वक सुनकर केवल एक शब्द बोले, बहुत अच्छा। राजा जी मीटिंग में वापस आए, पूरा पैक्ट लिख कर हस्ताक्षर हो गया। पृष्ठ संख्या 83। भूख हड़ताल के 5वें दिन अर्थात 24 सितंबर को पूरा समझौता हो गया। एमसी राजा और अंबेडकर दलित वर्ग के दोनों संगठन सवर्ण हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन वहां उपस्थित कांग्रेस के सभी नेताओं ने हस्ताक्षर किए। मशहूर उदार नेताओं ने अपने हस्ताक्षर करके इसे मान्यता दी। दूसरे दिन बंबई में मालवीय जी की अध्यक्षता में सम्मेलन करके पूरे प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ तथा सरकार से आग्रह हुआ कि इस समझौते के अनुसार वह ऐसी व्यवस्था करे कि गांधी जी का अनशन टूट सके। प्रस्ताव के अंत में गांधी जी द्वारा तैयार प्रस्ताव जोड़ा गया। आज से हिंदू समाज में जन्मना कोई अछूत नहीं माना जाएगा। जिन्हें आज तक हिंदू समाज में अछूत माना जाता था, उन्हें सार्वजनिक कुआं, स्कूल, सड़क अथवा सार्वजनिक संस्थान के उपयोग के लिए उनका सवर्ण हिंदुओं की ही तरह अधिकार होगा। इस अधिकार को प्रथम अवसर में ही कानूनी रूप दिया जाएगा तथा स्वराज्य की संसद में पास होने वाला पहला कानून होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तो इस तरह की बुराइयों को समाप्त करने के लिए सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूर्व घोषणा में परिवर्तन कर दिया। गांधी जी ने इस उम्मीद के साथ अनशन तोड़ा कि उनके छुआछूत संबंधी सारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि आजादी का संदेश प्रत्येक अछूत के घर में प्रवेश करेगा। यह तभी संभव है जब सुधारक सभी गांवों में संपर्क करें। गांधी जी ने कहा, सबसे बड़ा पक्ष समझौते का यह है कि सवर्ण और दलित में परस्पर विश्वास तथा सभी वर्गों की बुनियादी एकता का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नए प्रभावृत्त का उदय संभावित है। मैं मुसलमानों के लिए भी वही हूँ जो 1920 से 22 में था। मैं अपने जीवन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए न्यौछावर करने को तैयार हूँ। जैसा कि मैंने दिल्ली में तात्विक और स्थायी एकता की कोशिश की थी, मैं ऐसा समझता हूँ कि उचित दिशा में एक स्वाभाविक एकता की पहल होगी और कोई वर्ग उसमें अलग नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा, जब तक हम अपनी इच्छा से इससे भी किसी अच्छे समझौते की शर्तों पर नहीं पहुंचते, तब तक कम से कम हम तो इस पूरे समझौते को लागू कराने के लिए वचनबद्ध हैं, और कम से कम ऐसा करने के लिए मेरे हरिजन बंधु इस कार्य के लिए मेरे जीवन को बंधक रूप में स्वीकार कर सकते हैं। 27 सितंबर को हिंदू पंचांग के अनुसार गांधी जी का 64वां जन्मदिन था। उस दिन नोबल शांति पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के सम्मान में एक मार्मिक भाषण दिया। उन्होंने काव्यात्मक शैली में कहा, हमें महात्मा गांधी जी के उस कार्य में हिस्सा बांटना है जो उन्होंने युगों से प्रचलित बोझ को समाप्त करने का संकल्प लिया है। समाज के कुछ लोग जन्म आधारित अपमान को झेल रहे हैं। मनुष्य के सम्मानपूर्ण जीवन का उन वर्गों के प्रति सभी की सहानुभूति होनी चाहिए। हम केवल भारत की नैतिक गुलामी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले रहे हैं, बल्कि मानवता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम तो हर तरह के उत्पीड़न को, चाहे किसी रूप में हो, उसे चुनौती दे रहे हैं। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छुआछूत निवारण सप्ताह मनाया गया। एक, महात्मा तेंदुलकर, वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 177। पृष्ठ संख्या 84। जनसभाओं में समझौते पढ़कर सुनाए गए और छुआछूत समाप्त करने की अपील की गई। सभी शहरों में अंतरजातीय भोज आयोजित हुए। अछूतों के लिए मंदिर और कुएं के दरवाजे खोले गए। अमृतलाल वी ठक्कर की देखरेख में दिल्ली में हेडक्वार्टर के साथ छुआछूत मिटाओ लीग की स्थापना हुई। 25 लाख का फंड बनाने के लिए अपील हुई और चारों तरफ से धन आने लगा। भोपाल के नवाब ने इस पुनीत कार्य के लिए 5,000 का दान भेजा। इस तरह गांधी ने कैदी रूप में अनशन करके पूरे देश में छुआछूत मिटाने के पक्ष में एक नया व्यापक वातावरण बनाया। उन्होंने एक ऐतिहासिक मोड़ पर देश को खड़ा किया। साथ ही उनके विशाल व्यक्तित्व के सामने अपनी मांगों पर अडिग रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलित वर्गों के लिए राजनैतिक अधिकार प्राप्त कर इन वर्गों के उत्थान और विकास का विशाल फाटक खोला। आज हम संपूर्ण घटनाक्रम का सांगोपांग अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि दलित वर्गों को विधायिका में आरक्षण के जरिए प्रवेश का अधिकार न मिला होता और इसके माध्यम से उनके हाथों में राजनैतिक सत्ता न आई होती, तो क्या आज इस वर्ग के लोग समाज में कहीं सम्मान प्राप्त कर पाते जो आज है? अंबेडकर ने अपने संघर्ष और एकाकी होने के बावजूद अपनी बात पर अड़कर और गांधी जी ने अपनी भौतिक शक्ति से सवर्णों की चेतना को झकझोर कर देश की सदियों पुरानी जाति प्रथा से उपजी एक वर्ग विशेष की अपमानजनक सामाजिक दशा को सुधारने का बड़ा और ऐतिहासिक काम किया। अंग्रेज सरकार ने दलित वर्गों को अलग से खड़ा कर स्वराज्य के व्यापक उद्देश्य को पीछे करने की जो कुटिल कोशिश की थी, उसे आपसी समझदारी से अंबेडकर और गांधी ने ध्वस्त कर दिया तथा स्वराज्य के आंदोलन को एक नई स्फूर्ति व शक्ति मिली। भारतीय समाज के एक और विघटन की साम्राज्यवादी कोशिश को करारा झटका लगा। भारत का बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू वर्ग बहुत ही शिष्टता के साथ दलितों को उनकी आबादी के अनुपात में विधिमंडलों में आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तथा दलितों ने भी बदले में गांधी जी के आज़ादी के संग्राम में पूर्ण सहयोगी होने का संकल्प किया। पूना समझौता भारतीय समाज की एकता में मील का पत्थर है। गांधी जी कहते थे, उनकी आज़ादी का मतलब बृहत्तर भारतीय समाज की एकता है। भारतीय राष्ट्रीय एकता और पुनर्जागरण के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक क्षण शायद कभी नहीं आया जब दलितों के युगों पुराने सामाजिक अन्याय की कालिख को धोने के लिए सवर्ण हिंदू जनमानस बिना किसी प्रतिरोध के तैयार हुआ। इस महान ऐतिहासिक वातावरण को उस समय गांधी ने तैयार किया जब भारतीय समाज घोर अंधविश्वासी और पीछे देखूं था। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की संस्तुतियों को लागू किया और पिछड़े वर्ग के युवकों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण लागू कर दिया, तो पूरे देश में इस घोषणा के विरुद्ध कितना जबरदस्त तूफान खड़ा हुआ यह वे लोग भली भांति जानते हैं जो उस समय सक्रिय थे। किंतु वर्षों पहले जब हिंदू समाज भयंकर रूढ़िवादी से ग्रस्त था, सवर्ण मानसिकता की जकड़बंदी से पूरा समाज आक्रांत था, ऐसे में सवर्ण नेताओं द्वारा स्वेच्छा से और बृहत्तर हिंदू सवर्ण मानसिकता द्वारा दलित जातियों को बिना किसी उत्तेजना के धारा सभाओं में इतनी बड़ी संख्या में आरक्षित सीटें दे देना एक ऐतिहासिक घटना है। मेरी राय में गांधी को कोसने वाले दलित नेताओं को उस समय की स्थिति का निरपेक्ष आकलन बिना किसी पूर्वग्रह के करना चाहिए। यदि महात्मा गांधी ने अपनी जान को दांव पर लगाकर सवर्ण नेताओं व जनता पर गंभीर दबाव न पैदा किया होता, तो शायद इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात सवर्णों के गले नहीं उतरने वाली थी।